ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं निमातु तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायाधीतम् अरे तुम्ही सकाळवेला कोता छिले रे গোবর্ধনে নিয়ে যাব আমার শরীর গেলে ভালো কালকে গিয়ে ঘুরে আসতে পারে কালকে তোমার কালকেই যাবে শ্রীমদ্ভাগবতম তৃতীয় স্কন্দ পাঁচ ছ মহিনা কিছু নেই হুয়া মথুরা মে আতে হি গলা বে মথুরা কি মহিমা হি অপার হ্যাঁ লোক সে সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে লমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বশক্তি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জি বতলা রে সাধু সঙ্গ কি মহিমা সাধু পহলে সাধু কৌন হ্যাঁ जिसके विषय में ये बतला रहे हैं सत से भगवान को समझो ये बात तो पूरे टाइम बात करो ये भक्ति का एक क्रम है पहले साधु के प्रति श्रद्धा होगी नहीं तो साधु संग कुछ नहीं करेगा पहले श्रद्धा होनी चाहिए जो कुछ ये कर रहे हैं पूर्ण सत्य का है और इनकी बात सुनने से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा ये पूर्ण श्रद्धा हो इसके बाद में अभी तक ये साधु संघ जो हुआ ये प्रकृष्ट नहीं हुआ जब साधुओं के प्रति श्रद्धा होगी तब उनके संघ से प्रकृष्ट संघ से भगवान की लीला कथाएं जो बड़ी विक्रमशील है, शक्तिशाली है। उसके द्वारा क्या होगा, अप्रकृष्ट संग बसत, जो साधु संग ठीक नहीं था और उसमें तुम्हारी जो दुर्बुद्धि हुई है वो दूर होकर के भजन क्रिया आरंभ होगी। पहले साधु संग से नहीं होगा, और साधु भी कैसा होना चाहिए, अनर्थ निवृत्त और अनुभूति संपन्न और भगवान के नाम भजन में प्रवीण, भगवान की लीला कथाओं को विशेष रूप से जो जानता है, ऐसे साधुओं का संग। उस समय में प्रथमतः भजन की क्रिया आरंभ होगी, भगवान की कथा नहीं, भगवान की कथा वो नहीं समझ पाएगा। जिस स्तर की बात कहेंगे उनके स्तर में वो नहीं पहुंच पाएगा, जब तक कि अनर्थ न दूर हो जाए, इस शरीर में आत्मबुद्धि दूर न हो जाए, गुरु जी की शिक्षा दीक्षा से उसका चित्त निर्मल हो गया हो, संबंध ज्ञान उदित हो गया हो, और संबंध ज्ञान के साथ में भजन करेगा। तो उस समय में अभी ये हरि कथा के योग्य नहीं हुआ है, अभी भजन आरंभ। इसके बाद में प्रकृष्ट संग होगा। प्रकृष्ट संग कब होगा, बैठ जाओ, प्रकृष्ट संग कब होगा, अनर्थ दूर हो गया और कृष्ण से संबंध ज्ञान हो गया और कुछ कुछ वो समझने लगा, हरि कथा समझने लगा। तो ऐसे जैसे रूप और सनातन परस्पर बैठते हैं तो क्या होता है, वो प्रकृष्ट संग, वो संग। उस समय में धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होने लग जाती है। इसके बाद में सही कथा सकली अमाते निष्ठा उत्पादन करता, वो कथाओं को सुनने से क्रमशः उनके मुख से अनर्थ निवृत्ति वाले अष्टकालीय लीला का चिंतन करने वाले और नाम का प्रभाव कुछ अनुभव करने वाले, तब हमारी विद्यमती जो कथाएं हैं वो समझेगा और समझ करके उसको भगवत तत्व का ज्ञान होगा, साथ साथ में विरक्ति आएगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानम च जगायते। भगवान की कथा आरंभ हुई सुनना और भजन आरंभ किया, किंतु यथार्थ भगवान के प्रति अनुराग और विषयों के प्रति वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ तो समझो ये गड़बड़ी है, जरूर वैराग्य नहीं आया और तत्व ज्ञान भी नहीं हुआ। कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, रस तत्व, ये सब का ज्ञान नहीं हो रहा और न तो वैराग्य हो रहा है विषयों से, तब तो समझो ये गड़बड़ी है, संग नहीं हो रहा है, भजन साधन नहीं हो रहा है। तो यदि फिर ऐसा होने लगेगी तो पहले सुनते 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 वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत आशु ज्ञानम कहना, और उसके बाद में कृष्ण ऐसे हैं पुण्य श्रवण कीर्तन क्या नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। तो ऐसा भक्त भागवत किंतु भक्त भागवत के माध्यम से तो अब अभी निष्ठा और उसके बाद भजन करते करते रुचि आ रही और 10 वर्ष 20 वर्ष हो गया अभी निष्ठा नहीं आई न रुचि आई तो भी गड़बड़ी। इसलिए पहले रुचि होगी हृदय और कर्ण की रसायन तब कथा है जब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं हुई रुचि उत्पन्न नहीं हुई तब तक हृदय और कानों की रसायन कथा नहीं हुई उसको अच्छी नहीं हुई तब उसके लिए सुखद हो रहा है अच्छा लगता है रुचि के संसार सुनता है। इसके बाद में हमारी कथाओं का जोशन जोशना प्रीतिपूर्वक आस्वादन करने लगेगा हरि कथा को। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि कथा मत बंद कीजिए कोई बात नहीं है अब मुझे भूख प्यास जगत की नहीं है मैं भी नहीं उठूंगा आप भी नहीं उठेंगे आप हरि कथा का आस्वादन। गुरु सनातन जी सवेरे से शाम तक हरि कथा करते 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 उनको समय का ज्ञान नहीं रामानंद और स्वरूप दामोदर महापुरुष के साथ में बैठ रहे का आस्वादन करें जाने क्षण भर में सारी रात बीत गई। तो जब हरि कथाओं का इस प्रकार से रसास्वादन करने लगा तब अपवर्ग वर्तमानी अपवर्ग माने निवृत्ति अविद्या निवृत्ति प्राप्ति पर भगवान की भक्ति के प्राप्ति के पथ में ही आएगा अविद्या निवृत्ति हो जाएगी अपने आप। और पीछे भगवान की कथा में भगवान के नाम में भगवान की भक्ति में श्रद्धा श्रद्धा भक्ति और उसके बाद में अर्थात आशक्ति और रति माने क्या भाव भाव भक्ति और अंत में प्रेम भक्ति आशु शीघ्री होगी अनुक्रमिष्यति अनुक्रम से समय के अनुसार में क्रम के अनुसार में ये पहले श्रद्धा फिर भाव भक्ति साधन भक्ति श्रद्धा में यहाँ पर भाव भक्ति और फिर भाव भक्ति और अंत में प्रेम भक्ति होगी उस कथा के श्रवण से ही और आलाप से ही साधुओं के चंद में हरि कथा जैसे श्रवण करेंगे। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ये विचार थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल दो
that person who is a self-realized soul, who who is completely established, well established in his relationship with Bhagwan, he can be referred as sadhu. Association of such a saintly person will give so many deserts. What are those deserts? We'll discuss now. Prior to that, also we have to understand that in the first stage, when a sadhak, he is indulging in such association, he is doing sadhusan, which is called a prakrishta sadhusan, means he is associating, but his association is not prakrish or complete in all forms. Is partial association. Why? Because of his being unqualified, he is not able to receive all the mercy, he is not able to retain all the mercy. At this moment, although he may have the chance to hear the powerful pastimes of the Lord, those powerful pastimes, they are so powerful, what they will do? They will now gradually, depending on the sincerity and surrender of the sadhak, gradually eradicate all the discrepancies which are now blocking his advancement in that sadhusan. And by the result of such powerful pastimes, he will now become qualified to go deeper into the second level of sadhusan, which is called prakrish or complete sadhusan. This only starts happening when one is now getting free from the gross identification with this body, with this matter, the atmabuddhi. This must go away. And also, he is gradually now being free from all the anarthas and is now entering in the stage of nishtha. This is all the process of bhajani kriya, following the limbs of devotion. Then, gradually, when he attains this level of nishtha, he can now develop some taste, some ruchi in hearing Harikatha. Only at this stage, now the pastimes of the Lord will become rasayan or nectar for ears, not prior to this stage. But again, we have to very carefully understand that the kind of sadhu which Śrīla Vaiṣṇava Caitanya Thakura is pointing out is one who is now completely immersed in tasting the bliss of the holy name, who actually realizes the nam prabhav, the influence of name, and that's why he is able to impart that realization onto the sadhak. Gradually in that association, what else will happen? He will now become more and more knowledgeable about the science of devotion. Bhagavad Tattva Gyan will manifest in his heart. And then, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. According to this verse, he will now not only make advancement on the spiritual path eternally, he will also become more knowledgeable, and the resultant factor of such activities will develop great detachment in his heart from material sense objects. Despite having such association for years after years, 20 years, 30 years, if one is not developing such detachment from material sense objects and is not developing great attachment and taste for nam, then he should try to analyze there is something wrong, either in the process or in his approach or somewhere else. Because this verse confirms that when everything is properly happening, then gradually one will progress from the stage of Shraddha to Nishtha and eventually to the stage of Bhava. And this is so much satisfying, actually real nectar for one's self. Just as we see Parikshit Maharaj, he is completely satisfied just by hearing Harikatha. He is telling Shukdev Goswami to go on and on and on. He is not feeling thirsty, he is not feeling hungry. Same we see in the example of Sri Rupa Goswami and Sanatana Goswami, or in the case of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramananda. They're discussing all these subject matters night after night. The whole night just passes in just one blink of an eye, and they don't even realize such a big time lapse. Then, apavarga. What is apavarga? Apavarga means avidya nivritti. Avidya means ignorance. or forgetfulness of one's real identification. This is true process of bhajan, when one will truly, sincerely enter in this bhajan kriya, then this avidya nivritti will take place and bhaktir bhavati naishthiki. One's devotion to the Supreme Lord and his attachment to following the practices of the path of Shuddha Bhakti will become unflinching.
कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे त्यो पुनः मुख्य अंग। प्रभुपाद जी तथ्य में इसको दे रहे हैं, कृष्ण भक्ति का जन्म मूल ही साधु संग। साधुओं के संग का भी स्तर होता है, विभिन्न तरह के स्तर होते हैं। किसी साधक की पूर्व जन्म की के संस्कार और इस जन्म के संस्कार से साधु संग में रुचि होती है, अन्यथा नहीं होगी। पूर्व जन्म का भी संस्कार चाहिए, इस जन्म का भी संस्कार चाहिए। एक आदमी थोड़ी उम्र से ही उसका संसार पूर्व जन्म के संस्कार के वजह से बहुत ऊंचा उठ जाता है, और एक आदमी पूर्व जन्म का या इस जन्म का संस्कार नहीं है तो उसकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाती। इसलिए भक्ति का मूल साधु संग। और उसके मान लिया कि एक आदमी अभी कनिष्ठ अधिकार में है और उत्तम महाभागवत का संग मिला, उसको श्रद्धा नहीं होगी। उस कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा होगी मध्यम अधिकार में रहने वाले, उससे थोड़ा सा ऊपर रहने वाले उसी के ऊपर। उसमें वो कुछ त्रुटियां देखेगा, हाँ, उसके जीवन चरित्र में कुछ त्रुटि देखेगा। सभी लोग सुखदेव गोस्वामी का संग नहीं कर सकते, उनमें कुछ त्रुटि देखेगा। इसलिए कुछ होना चाहिए, पूर्व जन्म का संस्कार, इस जन्म का संस्कार, और भगवान के क्रम से उसकी रुचि हो गई, तब तो फिर तक न रसायना पता होगी, अन्यथा नहीं होगी, संभव ही नहीं है उसकी। जैसे कोई उन्नत भागवत राधा कृष्ण की लीलाओं में रास लीला का वर्णन कर रहा हो, उसके प्रति सब लोग दोष देखेंगे, उस अधिकार में नहीं है, इसलिए वो संग उनके लिए सुविधादायक नहीं होगा। इसलिए वो ऐसे साधु का संग करेगा जिसे उसके धीरे 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 रुचि हो। इसलिए साधु संग भक्ति का जन्म मूल है, किंतु क्रम से होगा। वो क्रम दिखला है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति अथा शक्ति अभाव तथा प्रेमाभुदंचति साधका नाम एम प्रेम प्रादुर्भाव। आप लोगों ने बहुत बार इसको सुना है। कोनो भाग्य कोनो जीवेर श्रद्धा यदि है, कोनो भाग्य जीवेर श्रद्धा यदि है, ये भाग्य क्या है? वो भाग्य पूर्व जन्म की सुकृति संस्कार और इस जन्म का, तो उसकी श्रद्धा दृढ़ होगी, तबे से जीव साधु संग होगा। इसके बाद में तब साधु संग होगा। पहले उस साधु संग के में हरि कथा से अनर्थ निवृत्ति इत्यादि होगा, जैसा कि उन्होंने लिखा अनर्थ निवृत्ति तो निष्ठा साधु संघ है श्रवण कीर्तन साधन भक्ते सब है सब अनर्थ निवृत्ति। साधन भक्ति से अनर्थ निवृत्ति होगी, किंतु कौन सी साधन भक्ति? जो भक्ति जो साधन भाव भक्ति को लक्ष्य करके साधन किया जाता है उससे होगा। और यदि भाव को लक्ष्य नहीं, भाव ही नहीं जानता है जी भाव क्या हुआ, पहले साधु संघ में भाव का तात्पर्य समझेगा और तब साधु संघ करने से तब वो धीरे 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 उस स्थिति में आएगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या कर रहा था? हाँ, प्रकृति साध्य भवे तसाध्य भाव। पहले भाव तो समझिए क्या है, प्रेम रूपी सूर्य का किरण करना है ये भाव। प्रेम में जो कुछ है इसमें है, किंतु अभी पूर्ण विकसित नहीं है। जैसे पानी का एक बूंद, समुद्र का एक बिंदु, समुद्र में जो गुण है पूरे गुण नहीं है, कुछ थोड़े से गुण है एक बूंद में। ये आग पर रखते ही उड़ जाएगा, सूर्य के किरणों से उड़ जाएगा, किंतु है वही। उसी प्रकार से भाव अवस्था में ये प्रेम का आभास है, तो जो जो प्रेम में होता है सब ये साधन अवस्था में भाव अवस्था में ये सब समझेगा। जैसे अष्टकाली लीला चिंतन कर रहा है भाव अवस्था में करेगा, आसक्ति के बाद ही आरंभ होता है, तो उस समय में जो प्रेम में अवस्था होती है उसका चिंतन ये करेगा और तब उसकी ऐसे ही सिद्धि होगी। यदि भाव अवस्था में साधन में नहीं होगा तो प्रेम में नहीं होगा, इसलिए साधन अवस्था में ही वो सब चीजें साधन करेगा, अष्टकादि लीला का चिंतन भी करेगा, किंतु जुग के स्थिति में ऐसे साधारण स्थिति में साधन भक्ते है सब अनर्थ निवर्तन, अनर्थ निवृत्ति है भक्ति निष्ठा। तो कृति साध्य भवेत साध्य भावा, साध्य भावा जब उसका लक्ष्य रहेगा, जी हमारी सारी इंद्रियों और मन किन्ने व्यत्यात्मक और प्रव्यत्यात्मक सब कृष्ण की प्रीति के लिए करेंगे, और वह भाव का हम साधन का भाव भी आया नहीं है, किंतु समझ रहा है क्रमशः साधु संघ में, तो उसके लिए लोभ होगा। यदि लोभ नहीं हुआ तो फिर उसके लिए प्रवृत्ति ही क्यों होगी, इसे लोभ होगा। जहां वो लोभ होगा वहीं वो जाएगा और अपना सब कुछ समर्पण करके और तब इस चीज को ग्रहण करेगा। किंतु यह जो भाव है साधन भावा कहा गया, किंतु नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध वो इसके द्वारा वो प्रकट होता है। यह भाव नित्य है, कहां नित्य है? नित्य सिद्ध परिक्रम में वो भाव सब नित्य हैं। जैसे नंद बाबा यशोदा जी में, सखाओं में और गोपियों में, विशेष करके रूप मंजरी आदि गोपियों में नित्य सिद्ध हैं। यदि उनकी कथाओं को सुन करके कृष्ण के प्रति उनका जो जो प्रेम सेवा उसको सुना और यदि उसके प्रति लोभ हुआ, तब उस लोभ से उस साधन के द्वारा भाव को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करें, इसके पहले नहीं। पहले तो भाव समझिए, भाव क्या चीज है? प्रेम का आभास है अला, तो उसके लिए लोभ उत्पन्न होगा। लोभ जहां उत्पन्न हुआ अनर्थ तो अपने आप जाएगा, अनर्थ निवृत्ति के लिए उसको कोई भी चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। यदि किसी का तन मन विचार भाव सब कुछ कृष्ण की ही चिंता कर रहा है, उसको फुर्सत नहीं है कि हमारे अनर्थ क्या है और उसका क्या है, तो फिर तो अनर्थ निवृत्ति ऐसे ही हो जाएगी। इसलिए पहले भाव को समझ करके, ये भाव नित्य सिद्ध है, इंद्रियों के द्वारा पहले क्यों कहा गया, क्यों कहा गया ऐसा, इसलिए चेष्टा से नहीं होगा, चेष्टा से भी नहीं होगी ये चीजें, वो होगा वैष्णव की कृपा और भगवान की कृपा सिद्ध ये चीज, बिना कृपा के नहीं होगा। साधन करके कर लेंगे दुर्लभ चीज है, नहीं होगा उसको, वो बिना भगवत कृपा या ऐसा रसिक वैष्णव तत्व है, वो कृपा करके सुना करके समझा करके वो भाव, अन्यथा अपने साधन से नहीं। हाँ ये सुनो, बोलो थोड़ा सा बोलो। बहुत दुर्लभ बहुत कठिन चीज है।
Now, Krishna Bhakti Janmamool Hai Sadhu Sangh. In this verse, this is explained that the source or the birth of Bhakti is Sadhu Sangh. Only in the association of devotees one has the fortune to imbibe the proper spirit to engage oneself in the path of devotion. But there are so many gradations of sadhu sangha. This must be very clearly understood. For example, if one doesn't have samskars or sukritis from past life, that is proper spiritual merits from one's past life or from the present life, then he will not develop proper taste or attachment in sadhu sangha. We see sometimes in some cases someone who is very young in his age, his or her age, and he is coming in touch with sadhus, and very quickly one makes advancement. Why? Because he has a good collection of spiritual merits from his past life and present life. And in another case, one may be having sadhu sangha from so many years, but because of lacking of this samskars and sukritis, is not able to make any progress, or he is simply struggling to get rid from his anarthas. There may be a case that a person who is Kanishtha Adhikari, he may have the fortune to come in contact with the Uttam Adhikari, but because of his inferior level of sukritis, he will not develop that attraction for him. He may just be going well with only someone who is little more advanced than him in Madhyam Adhikar. For example, it's very difficult for anyone or everyone to benefit from the association of Shukdev Goswami. They will not be able to contemplate or understand his activities. If any Mahabhagavata devotee, he is giving discourses on Krishna's intimate pastimes like Rasa Leela, then such persons who don't have sukritis, who don't have adhikar, they will simply see faults in that discourse or in that action. So, for sadhu sangha, there is a certain kram or sequential order. One has to go through that. And what is that? Atha sadhu sangha bhajan kriya. In this verse, the nine stages of sadhu sangha has been explained. First level of sadhu sangha, then second level, then gradually getting rid from anarthas, and then entering into the stages of nishtha, ruchi, asakti. This process must be followed. In the next verse, it is said that by any fortune, if one develops or one gets sadhu sangha, then one is very fortunate. Here, what does the word bhagya or fortune means? It also simply means or refers to sukritis and samskars from past life and present life. If one doesn't have that, one will not be able to get any benefit from sadhusanga. Then, gradually, if one continues to be in sadhusanga, then automatically he will have the opportunity to engage in Shravan Kirtan and other limbs of devotion, which will gradually cleanse his heart and purify his stages of anartha, and then he will enter into the process of sadhana bhakti. But here we have to again very carefully understand what kind of sadhana bhakti eradicates all the anarthas. Only when one is aiming all the activities of following the limbs of devotion to attain bhav, the stage of bhav, then only that sadhana bhakti will eradicate anarthas, not otherwise. That means that sadhak must understand what bhav means. If one has no clear understanding of the stage of bhav, how can he perform sadhana bhakti? Bhav is prema bhas, or the semblance of love, the rays of the love, which is referred to as sun.
एक बात अच्छी तरह से समझो, हमने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल मणि ग्रंथ पढ़ा, फॉर्मूला सब ठीक किया, जो ऐसे करने से भक्ति होता है और ये स्थाई भाव है, ये विभाव है, ये अलंबन है, ये उद्दीपन है, और फिर इसके बाद में ये संचारी, ये व्यभिचारी, ये सब भाव, समझ लिया सर? अब इनके मिशन से रसमयी भक्ति हो, समझ तो लिया, सब फार्मूला हो गया, किंतु वो भाव कहाँ से आएगा? आएगा कहाँ से? इसे वो आएगा, ऐसा कोई महाभागवत हो या भागवत जिसके हृदय में ये सब चीजें आई हो, अनुभव किया हो, वो कृपा करने में समर्थ हो, उसकी कृपा से आए। ये जागतिक चीज नहीं है, ये फार्मूला से ऐसे फार्मूला से बना दो, भक्ति ऐसी नहीं है। हमने सब कुछ समझ लिया, स्थाई भाव समझ लिया और व्यभिचारी भाव समझ लिया, उद्दीपन और ये सब कुछ समझ लिया, किंतु कहाँ रस आता है हृदय में? उपलब्धि नहीं हो। इसलिए यहीं पर विशेष करके साधु संघ की विशेष आवश्यकता है। हम लोगों की तो बात छोड़ो, बृहद भगवतामृत में दूसरे खंड में वो कौन था, सब कुछ सुना गुरु जी से, सब कुछ सुन लिया और ऊंची स्थिति में पहुंच गया, किंतु रस की अनुभूति नहीं हुई, रुचि तक हुई, आसक्ति तक हुई, ये सब तो होगा, किंतु वह रसमय भक्ति गुरु जी ने कहा, कौन सा गुरु कहा? राधा जी के द्वारा भेजा हुआ स्वरूप महाभागवत, और उसने कह दिया जी सिर पर हाथ रखे बस। साथ ही साथ में वो देखा क्या, गोलोक वृंदावन जा रहा, और वहां पहुंच करके कृष्ण को देखा, और वही उसका जो भाव था गुरु का, वही भाव उसके अंदर में आ गया। ऐसी साधु संघ की महिमा है, बहुत महिमा। इसलिए ऐसा ही भाव हो हम लोगों के अंदर, ऐसा ही साधन भजन करें, गुरु की ऐसी निष्कपट सेवा करें कि गुरु गैया की भांति अपना दूध छोड़ दे बछड़े के लिए। बछड़ा भी तो ऐसा होना चाहिए, इसलिए उसके प्रति गुरु का ऐसा भाव हो जो अपने आप दूध चुचुआए, अर्थात तो उसकी कृपा बरसे। वो लोग कृपा करने के लिए ऐसे महापुरुष लोग, भगवान भी, महाप्रभु भी कृपा करने के लिए आतुर हैं, किंतु पात्र नहीं। इसलिए पात्र के लिए प्रारंभ से उसको ऐसा कराते हैं, वैसा संग देते हैं, और धीरे 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 निष्ठा रूप से आ सकते। इसलिए यही मूल कथा है। इसी को सनातन गोस्वामी ने वैज्ञानिक ढंग से उपस्थित, गुरु की सेवा भी वैसी होनी चाहिए, गुरु का हृदय द्रवित हो जाए, अपने आप उसकी कृपा बरसे, तो गुरु जैसा योग्य होगा वैसे ही तो दे सकता, जो अपने में नहीं है वो क्या देगा, इसलिए गुरु की ऐसा होना चाहिए, अभिज्ञ होना चाहिए। संक्षेप में बदला, बहुत संख्या
The essence of the whole discussion which we had today is that, let us say, if one has read and studied Bhakti Swamin Sindhu and Ujjwali Mani or any such Ras Granth completely, entirely, from beginning to the end, and now he very well understands what is Thai Bhav, what is Alamban, what is Adipan, what is Sattvic, Vyavichari, and other ingredients, and how to mix them, and how to produce rus. But is there any realization in the heart? Is he relishing that? No. Just theory. Theory will not yield him any experience within his heart, or means that his heart will not melt. Heart will only melt when he will actually receive the content of mercy from any rasik Mahabhagwat, who is himself actually immersed in such bliss. Only he can impart that fortune to him. By any material calculation or formula or such understanding of these scriptures will not benefit. By one's own efforts, if one thinks that one will be able to attain this stage, then he is simply cheating himself. Only by the mercy, either by the direct mercy of the Lord or by the mercy of his dear devotee, one can attain this stage. What to speak of anyone else, if we see the example mentioned in Brihad Bhagavatamrita of Gop Kumar, then even though he heard everything from his guru, he was not able to realize anything in his heart. Then when his guru blessed him, putting his hand on his head, saying that now you may realize everything, he was able to immediately realize everything transcendental. He saw himself coming in contact with Krishna in Golok Vrindavan. And immediately, all the moods which his Gurudev was feeling in his heart were transferred in the heart of the Gop Kumar. So, this means... not Gop Kumar, but Janisharma. Now, the essence of this point also simply refers that one should try to serve one's Gurudev completely, avoiding oneself from any kind of cheating propensity. Unconditional surrender should be performed at the lotus feet of Guru. And by such behavior, by such sincere attitude on the part of disciple, what will happen? The Guru will become like a cow. What does the cow do? Cow, no matter if any other person is milking the cow will keep some milk for the cow. So a disciple has to become like a cow. He should endeavor sincerely and so work so hard that the Guru's heart should melt. Gurudev or the entire Parampara or Sri Chaitanya Mahaprabhu, they are present only to bestow their costless mercy and blessings, but they don't see any suitable candidate or recipient of mercy. Then this is the process. By engaging in this process of sadhan bhakti, they give the opportunity or facilitate that one should develop their qualities or qualification, eligibility, that one will be able to receive that mercy. This whole thing, Sri Sanatana Goswami is explaining so scientifically.
Jai Radha Madhava Jai. Guru cannot walk for you. Not for you, even eating. You will have to walk. He will tell this is the way and you should follow. So you should have to follow this and you will have to walk. I know that so many devotees are here, especially Westerns. They are with me but not listening.
They always I want to private meeting and special instruction.
So much lust. They write letters to ladies. Oh, I want to love you. I love you. What is this? Nonsense. So with anyone is with me, oh, you will have to control all these things. Really, you should follow my instruction. Otherwise, oh, you should return to your country. And there you should do all this. Not nonsense. So, Guru will not walk for you, you will have to walk. He will show the way and you will have to follow totally. Gaur Premanande.
Thus ends the class on the 9th of April in the evening in Sri Keshavji Gaudiya Math. Hare Krishna.